तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे नौचावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे नौचावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही।
ओम शांति। भाई साहब, ये नीमच का ग्रुप है और अब तक जितने भी कल सारा दिन में जो भी स्पीकर्स आए तो उनको परिचय कराने लगते तो वो कहते थे ये भी नीमच में आए हुए हैं, ये भी नीमच में आए हुए हैं। तो आप भी नीमच गए होंगे, इसीलिए आप अपना अनुभव और बहुत सी बातें वैसे भी सुनाते हैं तो परिचय की जरूरत ही नहीं। और वैसे भी राजू भाई इतने जगत प्रसिद्ध है कि आपकी पर्सनैलिटी परिचय की मोहताज नहीं। अभी तो पहले राजू भाई मुरली वाले, राजू भाई फोटोकॉपी वाले, राजू भाई पत्र पुष्प वाले, अभी राजू भाई ग्राम विकास वाले, इस नाम से आप बहुत मशहूर हैं और बहुत विशेष साइंटिफिक ऐसी खोजे की जिसकी वजह से गवर्नमेंट के आगे, लोगों के आगे, जैसे कोई सिद्ध किया जाता है ना, जैसे दादी जानकी जी के सारे प्रयोग उनकी पर्सनैलिटी राजयोग द्वारा सिद्ध है ना, कि राजयोग से ये फायदा होता है दादी जानकी जी को देखो, राजयोग से आयु बढ़ती है दादी जानकी को देखो, राजयोग से मेमोरी अच्छी रहती है दादी जानकी को देखो। तो इस तरह से राजयोग से बाहर की प्रकृति पर क्या प्रभाव दिखाई देता है तो वो ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं का एक बहुत बहुत अच्छा अद्भुत नमूना है जो आपके देखरेख में, आपके नेतृत्व में हो रहा है। तो राजू भाई योग के प्रयोग भी बहुत अच्छा करवाते हैं और सभी इनको राजू भाई के नाम से ही जानते हैं। नाम तो लंबा सा है इनका, राजेंद्र प्रसाद भाई, लेकिन सभी राजू भाई प्यार से बोलते हैं। और आज योग से शीतलता, सरलता, संतुष्टि, ये गुण ऐसे जीवन में भर जाए जो जीवन हरेक को पसंद आए, आपका जीवन हरेक के सामने उदाहरण भी बना रहे, हरेक को पसंद भी आए। जैसे सहनशील निर्माण भाव वाला व्यक्ति हरेक को अच्छा लगता है, लेकिन उसे भी कभी ना कभी अभिमान आ सकता है कि मेरे में ये गुण है। लेकिन जो राजयोगी है वो बाबा को सब कुछ देता हुआ चलता है तो उसे ये अभिमान आने की भी मार्जिन नहीं है। तो आदरणीय राजू भाई जी आज इस विषय पर प्रकाश भी डालेंगे ताकि सबका जीवन, योगी जीवन सरल हो जाए। ओम शांति।
ओम शांति। नीमच राजस्थान और एमपी का बॉर्डर है, इसलिए सभी समीप का लाभ लेते हैं। और सुरेंद्र भाई का बहुत प्यार भरा निमंत्रण मिलता है तो उसको कोई ना नहीं करता है, सब पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर मधुबन के सभी भाई बहने मुख्य जो भी हैं उनको उन्होंने नीमच में बुलाया है, बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कराई हैं। इस बार भी आप लोगों ने बहुत अच्छी सेवाएं की, महिला प्रभाग की, सब समाचार मुझे मिलते रहे हैं। तो सेवाएं तो बाबा खूब करा रहा है, धूम मचाई है, लेकिन सेवाओं के साथ साथ ये भी बहुत सुंदर बैलेंस आप सबने रखा है कि सेवाएं एक तरफ हैं लेकिन तपस्या बहुत बहुत जरूरी है वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। पांचों विकार और पांचों तत्व, ये 10 शीश वाला रावण हर एक के साथ साथ सामने है। इसलिए इस पर संपूर्ण विजय पाने के लिए योग का बल चाहिए। तो ऐसी योग भट्टियां, और वो भी मधुबन में चांस मिल जाए, तपस्या भूमि में चांस मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो लगातार 2-3 सालों से मधुबन पांडव भवन की भट्टी का आपको चांस मिल जाता है। चौथी भट्टी है तो भट्टी माना परिवर्तन, सिर्फ भट्टी कर लिया और चले गए तो फायदा नहीं। लेकिन भट्टी इसीलिए की जाती है कि जो कोई ऐसे संस्कार हैं, ऐसी आदतें हैं जो मुझ आत्मा को परेशान करती हैं। योग को अग्नि कहा जाता है, और अग्नि में अगर कोई भी चीज डाल दी जाए तो उसका रूप रंग सब परिवर्तन हो जाता है। तो योग अग्नि है, और इस योग अग्नि में जब हम अपने आप को तपाते हैं, रस एकाग्र स्थिति में स्थित होकर जब हम बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो बाबा की सर्व शक्तियां उस कनेक्शन के आधार से हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए योग एक ऐसी सुंदर विधि बाबा ने हम सबको सिखा दी है, जिस शक्ति की, जिस गुण की कमी महसूस होती है, उस गुण और शक्ति को भरने के लिए कुछ सेकंड भी बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, वो सागर है, समर्थ है। और यथार्थ विधि से अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो जिस संकल्प से होंगे वो संकल्प से धोने लगेंगे। इसलिए विधि यथार्थ होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कहेंगे हम इतना समय से योग कर रहे हैं लेकिन हमारी नेचर में, हमारी आदतों में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। कई लोग हैं कर रहे हैं बहुत समय से, क्लास में आते हैं, योग करते हैं, नियम पालन करते हैं, लेकिन आंतरिक संस्कारों में वो शुद्धता दिखाई नहीं देती है। बार बार कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कारण बनते हैं जो वो संस्कार पुनः इमर्ज हो जाते हैं, परवश स्थिति बन जाती है। इसलिए योग भट्टी ऐसी महसूसता करा देती है जिस महसूसता के आधार से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचान कर परिवर्तन कर सकें। तो आप सबको ये गोल्डन चांस जो भट्टी का मिला है, भिन्न भिन्न रीति से आप अभ्यास कर रहे होंगे, क्लासेस तो जरूर हो रही हैं, सुनते रहो, लेकिन मैं आज आपको 3-4 विधियां बता देता हूं, जिस विधियों से अगर योग करेंगे तो ये सर्व गुण अपने आप जीवन के अंदर आ जाएंगे। बाबा हम सबको कई प्रकार से नए नए ढंग से योग करने की विधियां सिखाते हैं, और उसकी विधि में सोल कॉन्शियस स्टेज तो पहला अभ्यास ही है। कोई भी अभ्यास करने के पहले इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान होना है, इस देह से अपने आप को डिटैच अनुभव करना है। भ्रकुटी आसन पर मैं चमकता हुआ सितारा, इस देह से अलग हूं, इसका अनुभव जरूर करना, क्योंकि यथार्थ याद उसे ही कहा जाता जिसमें देह और देही की अलग अलग महसूसता हो। जब देह और देही की अलग महसूसता होने लगती है तो जिस स्थितियों में आप पहुंचना चाहो उसमें सहज पहुंच सकते हो। तो बहुत अच्छी शीतलता का अनुभव करने के लिए ज्ञान सागर की गहराई में जाने की जरूरत है। बाबा हमारा हर गुण का सागर है और सागर के तले में जाने से रतन मिलते हैं, तले में जाने से उस शीतलता का अनुभव होता है। तो अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के उस ज्ञान सागर बाप को बहुत प्यार से ऐसे याद करो जो आत्मा मग्न स्थिति में स्थित हो जाए, जैसे एकदम तले में चली गई, उसके अंदर कोई भी चिंतन कोई भी संकल्प बाहरी दुनिया के नहीं चलते। क्योंकि बाहर से वैसे भी जब कोई डुबकी लगाता है तो आंख भी बंद कर लेता है, नाक कान भी बंद कर लेता है, फिर उसके तले में जाता है। तो हम सभी भी ऐसा अभ्यास करें कि सब बातों से न्यारे होकर के सब संकल्पों को समा करके एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के योग अभ्यास करें तो उस एकाग्रता के आधार से उस गहन शीतलता और शांति का अनुभव होगा, जैसे हम सागर के तले में पहुंच गए हैं और बाबा की वो शक्तियां मुझ आत्मा को और चार्ज कर रही हैं, सब रतन प्राप्त हो रहे हैं। तो पहली स्थिति के अंदर सागर के तले में जाने का अनुभव करो, बिल्कुल कोई विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है, संकल्पों को हलचल में लाने की जरूरत नहीं है। स्वस्वरूप में स्थित हुए बाबा को उसी बेहद सागर के रूप में देखा और एकदम ऐसे अनुभव किया जैसे मैं एकदम सागर के तले में चली गई, सब रतन मुझे प्राप्त हो रहे हैं और आत्मा शीतलता का अनुभव कर रही है। जितना जितना आप इस अनुभव को बढ़ाते जाएंगे उतना इन कर्मेंद्रियों के हर अंग में भी शीतलता आती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये विकारी बीज के कारण ये जो शरीर निर्माण हुआ है इसमें बहुत सारी उत्तेजनाएं भरी हुई हैं और उत्तेजनाएं होने के कारण बहुत जल्दी आवेग और आवेश आते हैं, क्योंकि शरीर का उत्पत्ति का तरीका कलयुग में आधा कल्प भोग बल से सृष्टि की रचना हुई है और इसके कारण माँ बाप के संस्कार वो बीज वो पारिवारिक जनरेशन का संस्कार चलता आया है। इस कर्म इंद्रियों को इस अंग अंग को शीतल बनाने के लिए कहते योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, दिखाई देता कोई भी उत्पत्ति नहीं कोई उत्तेजना नहीं, कभी भी मुख से कोई कर्म इंद्रिय से ऐसे आवेश वाले बोल आवेश वाली चलन आवेश वाला चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो योग अभ्यास भट्टी के अंदर आप सब ऐसा करो जो शीतलता की तले में जा करके अपने अंग अंग को शीतल बना लो। अगर योग अभ्यास करने वाले योगी भी छोटी छोटी बात में उत्तेजित हो जाएं, कर्मेंद्रियों की चंचलता को कंट्रोल न कर सकें, आवेग में आ जाएं या आवेश में आ जाएं, तो उन्होंने शीतलता का अनुभव नहीं किया है। इसलिए बाबा वैसे तो बहुत तेजोमय है, कहते हैं ज्ञान सूर्य है, लेकिन सूर्य इस रूप में नहीं है जो किसी को जला दे, ज्ञान का सूर्य है, उसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है। तो बाबा के इस दूसरे स्वरूप को ज्ञान सूर्य के रूप में इमर्ज करना है। जैसे हम जब निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो उस निराकारी स्थिति में इस देह से डिटैच होकर के हम अनुभव करते हैं कि अपने उस निराकारी वतन में उस अखंड ज्योति में तत्व के अंदर जहां पर बाबा सदा निवास करता है उस परम पवित्र घर में मैं आत्मा कुछ समय के लिए पहुंच गई हूं। उस असीम शांति के उस घर में, उस पवित्रता के घर में जब आत्मा पहुंचती है, अनुभव करती है कि मैं परम पवित्र बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांति धाम मेरा घर है, शांति का सागर मुझ आत्मा का पिता है, तो उस शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को बहुत शीतलता प्रदान करती हैं। तो दूसरा अभ्यास योग का जब हम करते हैं तो बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है और ज्ञान सूर्य के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर अपने सातों गुणों की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा पर डाल रहा है। तो जब उस स्थिति में बैठते हैं तो भी शीतलता का अनुभव कराती है, उससे भी आत्मा पावन बनती जाती है, उसकी मैल निकलती जाती है जो विकारों से, बुराइयों से, संग से, अनेक प्रकार के विकर्म होने के कारण कड़े संस्कार बन गए हैं। जब हम उस निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो वो कड़े संस्कार अपने आप परिवर्तित होने लगते हैं। साधारण योग से समय अधिक लगता है, परिवर्तन होते हैं। जैसे दो विधियां होती हैं पूजनीय बनाने के लिए, स्थूल में भी आप देखेंगे जो शालिग्राम पूजे जा रहे हैं वो कैसे बने। मैं एक स्थान पर गया था तो शालिग्रामों का एक बहुत बड़ा पहाड़ मुझे दिखाया, छोटे छोटे बहुत सुंदर चिकने चिकने पत्थर वहां रखे थे। कहते थे जहां पर मंदिर बनते हैं यहां से वो शालिग्राम लेके जाते हैं। तो वो स्थान जब मैंने देखा, हमने कहा शालिग्राम कैसे इतने हजारों करोड़ों ऐसे इकट्ठे बन गए, तो बोला ये सागर जो है इसकी लहरों के साथ साथ टकराते टकराते बार बार पानी की लहरें आती हैं, पत्थर इसको ले जा पत्थर को ले जाती हैं, फिर वापस करती, फिर ले जाती, तो सागर की वो लहरें उसको धीरे धीरे घिसाते घिसाते गोल कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं, अच्छा बना देती। तो एक पूजनीय बनने का एक भी तरीका है कि आप संघ में आ रहे हो, मुरली सुन रहे हो, अच्छा अच्छा मंथन कर रहे हो, सागर के लहरों में लहरा रहे हो, तो ये भी एक आत्मा को पावन बनाने का तरीका है। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, इसके अंदर तो बहुत मेहनत भी है, बहुत रगड़े खानी पड़ेंगी है? लेकिन अगर उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, जैसे मूर्ति के लिए छेनी हथौड़ी उठाई, काटा पीटा, शुद्ध कर दिया, फटाफट मूर्ति तैयार कर दी मूर्तिकार ने, वो भी पूजी जा रही है, वो भी पूजी जा रही है। तो हम सब अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें एकाग्रता की, मन और बुद्धि को एकाग्र करके उस निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें तो बहुत जल्दी आत्मा पावन बन जाएगी। बहुत सारे संस्कार जो हमारे प्रबल हैं, बार बार बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं, उन संस्कारों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जितना जितना वो संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे उसकी एक बहुत सुंदर निशानी हमें दिखाई देगी। जैसे सोनार सोने को शुद्ध बनाने के लिए एक बहुत तेज छोटी सी भट्टी जलाता है और उस तेज भट्टी के अंदर वो सोने को डाल देता है, उगल करके धीरे धीरे पानी जैसा हो करके बिल्कुल प्योर हो जाता, उसकी मैल अलग होती जाती, फिर उसकी जो छोटा सा सोना बचा उसकी ढिल्ली बना ली और फिर उससे जो रूप देना चाहे उसको दे देता है। ऐसे ही जब आत्मा एकदम योग अग्नि के अंदर एकाग्र चित्त स्थिति में स्थिर होकर के बैठती है तो उसकी मैल समाप्त हो जाती है, वो रियल गोल्ड के रूप में निखर जाती है। और रियल गोल्ड सहज मोल्ड हो जाता है और उसके अंदर नम्रता और सरलता का गुण स्वतः आ जाता है। सरलता एक ऐसा गुण है जो हर स्थान पर हमें एडजस्ट करने में मदद करती है। जो सरल नहीं होते, नेचर जिनकी सरल नहीं होती, वो किसी स्थान पर टिक नहीं पाते और बहुत सारे टकराव उनके सामने आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, संस्कारों में भिन्नताएं बन जाती हैं। लेकिन अगर नेचर सरल है तो सहनशील बन जाता है। सरलता भोलापन का रूप न ले। भोलापन होगा तो बाबा कई बार कह देते हैं जो भोले हैं उन पर माया का गोला लग जाता है। तो सरलता भोलापन नहीं है, लेकिन सरलता एक बहुत ऊंचा गुण है। और उस गुण को मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हमारे पास हमारी दादियां हैं, देखा है आप सबने, हमने दादी शांतामणि को देखा, शायद पुरानों ने देखा है, जानते हैं, जो नए आए हैं 5-7 साल के उनको पता नहीं है। दादी शांतामणि मम्मा की मौसियारी बहन थी, मौसी माना बहन, मम्मा की मम्मी और दादी शांतामणि की माँ बहनें थी। जैसे मम्मा की नेचर बहुत सरल रही, शांतामणि दादी की शक्ल सूरत पर्सनैलिटी देख के मम्मा की याद आती थी। मम्मा को देखा या दादी को देखा ऐसे लगता था हमने मम्मा से मिल लिया। दादी को यहां पर मधुबन में सेवाधारियों को संभालने की सेवा मिली थी। सेवाधारी जो आते हैं उनसे मिलना, उनको क्लास कराना, उनको ड्यूटी बांटना, पूरे यज्ञ का ध्यान, कहां पर किसको ड्यूटी देनी है, कहां क्या। लेकिन दादी को बाबा कहता था सचली कौड़ी, बहुत सच्ची, बहुत ईमानदार, बहुत साफ स्वच्छ और बहुत नेचर इजी सरल। कभी भी आप चले जाओ, कोई भी चला जाए, कोई भी बैठ कहे दादी यहां बैठेंगे, हाँ बैठा दो, बैठ जाएंगे, जो कहो ये क्लास कराएंगे, हाँ जी करा देंगे, इनसे मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। इतनी सरल नेचर, मिलनसार नेचर, कभी भी मैं समझता हूं कोई ने दादी के साथ ये अनुभव नहीं किया होगा कि दादी ने मेरे को कोई बात मेरी कट कर दी, दादी के पास गया मेरी दादी ने नहीं सुनी। इतनी सरलता एकदम प्रैक्टिकल दिखाई देती थी। बार बार हम लोगों का मिलना होता था, जाते थे, दादी समाचार पूछती थी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो सुना दो सुन लेंगी। दादी आप प्लेन में नहीं बैठी, एक बार विदेश जाएंगे, बाबा भेजेगा तो जाएंगे, दादी भेजेगी तो जाएंगे। कभी अपना संकल्प इमर्ज नहीं होने दिया कि मुझे कहीं जाना है, मुझे प्लेन में बैठना, कुछ नहीं। जो सेवा मिल जाए, जैसे मिल जाए, दादी जी जो कहें यस, कभी भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो ऐसी दादियां एक सरलता का प्रैक्टिकल प्रमाण अनुभव कराया उन्होंने कि सरल जीवन क्या होती है। मर्यादाएं बहुत दृढ़ता के साथ पालन की, सेवाएं बहुत अथक बन करके की, छोटी सेवा और बड़ी सेवा इसकी भी इच्छा नहीं रखी। कुछ दिन लास्ट में कई साल जब दादी जी बीमार रहने लगी तो दादी को मुरली सुनाने की सेवा मिली मधुबन में, स्टेज मिली, बाकी उन्होंने कभी स्टेज की डिमांड नहीं की। बहुत सरल नेचर। गुलजार दादी को आप देख रहे हो भगवान ने पसंद किया, किस आधार से पसंद किया, सरलता के आधार से। इतनी सरल, दुनिया क्या है उनको कुछ पता नहीं, उसमें एकदम इनोसेंट, विकारों से, बुराइयों से, दुनिया की हलचल से, सब बातों से निर्लिप्त अवस्था सरलता की निशानी है। ऐसी सरल अवस्था, सरल चित्त स्थिति हमारे व्यवहार में अगर आ जाए तो कभी टकराव होगा, कभी तू मैं मेरा तेरा होगा। मैं समझता हूं इन लोगों से, दादियों से कभी किसी ने टकराव नहीं लिया होगा, कोई टकराया नहीं होगा, इन्होंने ही नहीं लिया। हर बात में झुक करके, नम्रचित होकर के, सम्मान दे करके, कभी भी अपनी पद और पोजीशन मैं बड़ी हूं इनके जीवन में ये कहीं आया ही नहीं। तो ऐसी सरलता ही कैसे, मैं इनको जब देखता हूं, इन दादियों को, निर्मल संता दादी थी, दूसरी दादियां संतरी दादी थी, कितने दादियों के साथ मैं समझता हूं, अगर ये पूर्वजों का फोटो आप देखेंगे तो वो छोटा लगा है, सभी दादियों से मेरा सन्मुख मिलना हुआ है। 45 साल मुझे मधुबन में हो गए, सभी दादियों की बहुत नजदीक की पालना और अनुभूतियां हमने की। दादा बाबा की जो लौकिक में बहु लगती थी संतरी दादी, दादा विश्व किशोर बाबा के बहुत अनन्य रतन थे, राइट हैंड थे, बाबा के पहले 67 में उन्होंने शरीर छोड़ा। दादा विश्व किशोर दादा की धर्म पत्नी का नाम संतरी दादी रखा बाबा ने। संतरी दादी हमारा मधुबन का स्टॉक संभालती थी। हम लोगों को जो कपड़े मिलते हैं साल में, हर प्रकार की यहाँ की यज्ञ की पूरी संभाल, जैसे अभी मुन्नी बहन के पास है, उस समय संतरी दादी के पास थे। फिर लास्ट में दादी को, बड़ी दादी ने कहा कि यहाँ तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ा दमा के कारण सांस लेने में यहाँ तकलीफ होती थी, तो उनको कलकत्ता में निर्मल संता दादी के साथ रखा। दादी बाबा की फेवरेट संदेशी थी, फेवरेट संदेशी। सुना होगा एक मैगजीन में रमेश भाई ने एक लेख लिखा था संदेशी, संतरी दादी के संदेश के बारे में, कोई नई बात लिखी थी उन्होंने, और वो बात ये लिखी थी कि बाबा जादूगर है या नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक बार बाबा ने अचानक प्रोग्राम दिया संतरी दादी को कि जाओ तुम बाबा से संदेश लेकर के आ जाओ। तो संतरी दादी की एक, उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ था कि जब ही बाबा के पास जाएंगी तो कुछ न कुछ लेकर के, भोग लेकर के जाएंगे। तो भोग बने कैसे, बाबा ने अचानक कहा बच्ची जाओ बाबा से पूछ करके आ जाओ। तो दादी अचानक जब भोग लगाने बैठी तो क्या लेके जाए बाबा के पास, तो कहते भंडारे में गई तो कुछ लौंग और कुछ इलायची वहां रखी थी, वो उठाई एक कटोरी में रख ली और सामने रख करके भोग लगाया, बाबा के पास गई और बाबा उनमें प्रवेश हो जाते थे, आ जाते थे। जैसे गुलजार दादी का पाठ बाद में शुरू हुआ, संदेशी दादी, संतरी दादी का पाठ पहले चलता था। तो जब बाबा आ गए तो बच्चे सब इकट्ठे हो गए, तो बाबा तो दृष्टि दिया और सब बच्चों को अपने हाथ से टोली खिलानी, जब आते तो खिलाते थे। तो दादी ने ऐसे आंख बंद और ऐसे हाथ डालना शुरू किया उसके अंदर, तो ऊपर ढका हुआ था, इलायची और लौंग थी, उठाती गई। तो एक बहन गई दौड़ के, बाबा मैं आपको मदद करूं, बोला नहीं हाथ नहीं लगाना कोई, ऐसे रहो, रोक दिया। और दादी वही आंख बंद किए ऐसे उठाती गई, सारी सभा को इलायची और लौंग मिल गई। उसमें थी 5-7 होंगी, 10 होंगी, लेकिन उनका इतना अच्छा पार्ट था बाबा के साथ, जो उसमें से आता गया और देती गई, ऐसे लेती गई और ऐसे देती गई। तो रमेश भाई ने लेख लिखा था, ऐसी दादी होती, लेकिन इतनी सरल चित, इतनी निर्माण चित, मैं आपको क्या बताऊं, कोई भी प्रकार का अहम नहीं था जीवन में। कभी भी किसी ने, किसी को उन्होंने तंग नहीं किया होगा, कभी कोई बात नहीं कही होगी। और शरीर कैसे छोड़ा, शाम के समय दादी ने कहा, दादी आप बॉम्बे से जाओ, कल इलाज करा के, चेक करा करके कलकत्ता चले जाना। सब मधुबन निवासियों को बुलाया अपने पास, शाम को सब बिस्तर अटैची पैक कर लिया। शाम के समय मुझे भी बुलाया, मैं पर्सनल गया, इंद्रप्रस्थ में रहती थी, तो मुझे बुला के कहती है, राजू तुमने मुझे अभी इस बारी प्रश्न उत्तर नहीं दिए, क्लास नहीं दिए, मेरे को लेके आओ। मैं, दादी सुबह जाएंगी दे दूंगा। नहीं नहीं तुम अभी लेके आओ। तो मैं गया, लेकर के आया, क्वेश्चन आंसर जो बनाता हूँ मुरली के, दिया जाके दादी को, सबको मिली, खूब प्यार से टोली खिलाई, सबसे जैसे कोई छुट्टी लेता। अब छुट्टी तो बॉम्बे के लिए रही थी, कलकत्ता जाना था। और रात को सोई और 2 बजे, वैसे हमेशा 2-3 बजे उठ के वो योग करती थी, तो उस दिन नहीं उठी। तो उनके साथ जो ब्राह्मणी थी उसने हिलाया, दादी आज अमृत वेला हुआ, उठो। दादी है ही नहीं, सोए सोए चली गई। पहले तो उसने सोचा है ट्रांस में गई होंगी, फिर बाद में देखा, डॉक्टर्स को बुलाया तो डॉक्टर कहता दादी तो ही नहीं, शरीर छोड़ गई, ऐसे चली गई लेटे लेटे। ना ऐसी आत्माएं भी यज्ञ के अंदर एग्जाम्पल होकर के रही हैं, जिन्होंने योग बल से, बाबा की याद से अपनी नेचर को इतना इजी बनाया, इतना सरल बनाया, जो जैसे आत्मा मक्खन से बाल होकर के निकल गई। इसको कहते इजी नेचर। अगर जरा भी बॉडी कॉन्शियस है, जरा भी देहमान है, तो हम इजी नेचर नहीं बना सकते, सरल नेचर नहीं बन सकते। सरल स्वभाव नहीं हो सकता। तो हम सब भी इस अभ्यास को, योग के अभ्यास को जितना बढ़ाते हैं, उतना सरलता एक प्रैक्टिकल जीवन में आ जाती। कोई भी प्रकार का अहम दिखाई नहीं देता चलन में, बोलचाल में, भाषा में। कई हैं जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो ऐसे लगता है कि इनको अपनी सेवा का, अपने पद का, अपनी पोजीशन का थोड़ा सा अहंकार है, अहम दिखाई देता है, बोलचाल में भी दिखाई देता है। लेकिन ये योग की शक्ति ऐसी है, जितना हम बाबा के साथ बहुत स्नेह संबंध रखते हैं, वो बाबा हमको एकदम सरलता, नम्रता, निर्माणता का अवतार बना देता। कभी आता ही नहीं ये कर रहा हूं। बाबा कई बार कितनी शिक्षाएं देते हैं, कल की मुरली में भी, परसों की जो साकार बाबा की मुरली चल रही थी, बाबा बहुत प्यार से बोल के एक ही लाइन में बोलते हैं, साकार मुरली के अंदर ज्यादा नहीं स्पष्टीकरण है। बाबा ने कहा कि बच्चों को, बच्चों के द्वारा मैं अपना काम कर देता हूं, किसी को अच्छा समझा दिया, अच्छा उसको तीर लग गया, वो समझाने वाली समझती है मैंने बड़ा अच्छा समझाया, ये भी अहंकार है। वो तो बाबा गुप्त रीति से उसको मदद कर गया। मतलब बाबा हम बच्चों को इतना निरहंकारी, इतना निर्माण चित, नम्र चित बनाना चाहता है कि कितना भी हम बड़े से बड़ा कार्य करें, कितनी भी हम सेवाएं करें, कराने वाला करा रहा है, हमको एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, हम सिर्फ माध्यम है उसका। इतना हमारा बाबा के साथ इस समय प्यार भरा संबंध है, जरूरत भी पड़ती है बाबा को कहते, बाबा ये कार्य करना है, आप आओ करो, मेरे बस की बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह से अगर हम अपनी बुद्धि को सरेंडर करके, बाबा का आह्वान करके कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो बड़े से बड़ा कार्य बाबा अपने आप करा लेता है। लेकिन थोड़ा भी किसी को बुद्धि का अहंकार हो, पढ़ाई का अहंकार हो, अपनी अनुभव का भी अहंकार होता है, थोड़ा अनुभवी बन जाते, पुराने बन जाते, अच्छे योगी हैं, तो उसका भी अहंकार आ जाता है, मैं बहुत अच्छा योगी हूं। इस मैं को मार देना, इस मैं को समाप्त करना, वो सरलता की निशानी है। उसमें मैं आएगा ही नहीं। हमने दादी जी को देखा, आपने अनुभव किया होगा, प्रकाशमणि दादी ने इस मैं शब्द को जड़ से समाप्त किया था, कभी यूज नहीं किया। दादी ऐसे बोलती है, दादी ऐसे कहती, जैसे थर्ड पर्सन कोई बोल रहा है, उनके बोल में, भाषा में कभी मैं आया ही नहीं, इसलिए उन्होंने मैं को समाप्त कर दिया। तो जब योग बल से, बाबा की याद से, इतनी समर्पित भावना से, समर्पित भावना है ना, कराने वाला बाबा है, इतना बड़ा यज्ञ उसका है, वो सारे कार्य को कर रहा है, और कोई आकर के बीच में कहे मैंने किया है, तो बाबा क्या कहेगा उसको, कहता है दलाली ले रहा है, ये भी दलाली है। इतना बड़ा कार्य यज्ञ का चल रहा है, आप देखो, कभी कोई बड़े हैं, कभी नहीं है, कभी उनकी तबीयत कैसी भी है, इतने बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, इतना सारा कार्य चलता है। मुझे याद है जब पहले योग शिविर शुरू किया, 12 लोग यहां आए थे, 12 पहले शुरू हुआ इसे योग भवन से, योग भवन बना 73 में। तो दादी ने कहा, दीदी दादी दोनों थी, कि यहां योग शिविर करेंगे, लेकिन योग शिविर जब होगा तो मधुबन वालों को फुल मौन में रहना है। 12 लोग आए पहले पहले, और मैं समझता हूं 12 ही ज्ञान में चल गए। इतना अच्छा वातावरण बनाया, इतनी हम लोगों पर मेहनत की दादियों ने, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए, कोई इधर उधर बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर खड़े होकर के पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, हर प्रकार के मैनर्स सिखाए दादियों ने, कि आज से हमारे घर में वीआईपीज का आना शुरू हुआ है पहली बार। और वीआईपीज कौन थे पता है? प्रोफेसर थे सारे, गुजरात के सारे प्रिंसिपल प्रोफेसर्स आए थे, और वो सब के सब योग भवन में पहली बार रहे। तो दीदी दादी ने इतना ध्यान दिया, इतनी पालना दी, हम मधुबन को इतना टाइट किया, जो इतना अच्छा भाई मंडल, अभी तो कोई टाइट करने वाला रहा ही नहीं, कहने वाला ही नहीं रहा, हजारों आ रहे हैं, कितने वीआईपी आते हैं, अभी एक कॉन्फ्रेंस 80 साल में हुई, कितने वीवीआईपी आ गए, कोई ने कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी इतना प्रभाव, इतना अच्छा वायुमंडल अनुभव करके लोग जाते हैं। तो कई बार बाबा कहता है मैं चश्मा लगा देता हूं, उनको दिखाई नहीं देता गलत। लेकिन ये बाबा की शक्तियां जो कार्य कर रही हैं, उन शक्तियों का प्रभाव अपने आप लोगों पर अपना प्रभाव डाल देता है। तो हम सब कभी भी कोई सेवा के लिए निमित्त बाबा बना दे, कोई बड़े से बड़ा कार्य भी करा ले, तन अच्छे तन से करा दे, मन से करा दे, धन से करा दे, लेकिन करने के बाद इतनी निर्माणता, इतनी निरहंकार थी, कभी भी वर्णन चिंतन में भी ये ना आए कि मैं कर रहा हूं। इसको कहते हैं सरल चित्त नेचर। ऐसा सरल चित्त व्यवहार अगर हो तो व्यवहार की शुद्धता परिवार को भी एकता के सूत्र में बांध देती है, उससे कोई भी व्यक्ति दूर नहीं जाएगा, सब समीप रहेंगे, सब सहयोगी और स्नेही बन जाएंगे। किसी से सहयोग और स्नेह मांगने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं कुछ कार्य तो सामने वाला ऑफर करेगा कि ये मुझे दे दो मैं कर दूं, ये मेरा अपना अनुभव है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप बाबा करा लेता है। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि कोई भी बोल आर्डर वाले मेरे मुख से ना निकले, आर्डर के रूप में नहीं, सेवा के रूप में। ये करेंगे कर सकते हैं, जैसे दादी आज तक क्या यूज करती है शब्द, जानकी दादी को कोई भी काम कराना होता है, बैठी है एक जगह पर, बुलाएगी राजू ये कर सकते हो देखो, बस ऐसे प्यार से कह करके काम दे देगी, फिर पूछेगी नहीं किया कि नहीं किया, जानती है कर लेंगे। और हम हाजी करके आ गए कर लिया तो उनकी दुआएं मिल जाती है, उनका बल मिल जाता है। तो ऑर्डर के रूप में यज्ञ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बहुत सरल नेचर से, बहुत इजी रूप से सबको सम्मान देते हुए इस यज्ञ को इतना निर्विघ्न चला रहे हैं। इसलिए बाबा ने बहनों को शायद आगे रखा, वो निर्माणता, वो भी विशेषता, वो सरलता उनकी नेचर में भरी हुई है, और उसी नेचर के आधार से आज यज्ञ इतना आगे बढ़ा है, निर्विघ्न है। लेकिन ये नेचर बनी कैसे, इनका इतना बाबा में अटूट निश्चय, इतना विश्वास कि यज्ञ बाबा का है, करावनहार बाबा है, स्थापना हुई पड़ी है। मैंने एक बात सुनाई थी एक बार, बाबा का एक दृश्य मैं आपको सुनाता हूं। अव्यक्त बाबा मधुबन निवासियों से स्पेशल मिलने एक बार आए, ओम शांति भवन बन गया था, सब और सब ग्रुप को सेवाधारियों को ओम शांति भवन में जाने की छुट्टी नहीं थी, तो हम सब मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर भी कुछ था, शांति वन उस समय नहीं था, तो 300-400 लोग थे, बाबा के आगे बैठे थे। बाबा को बुलाया मधुबन वालों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम्स थी यज्ञ के अंदर, कई प्रकार की, थोड़ी बहुत संसार की, सरकार की, कई बातें होती यज्ञ के आगे। तो बाबा पहले मुरली चलाई, थोड़ी विशेषताएं सुनाई, उमंग उत्साह भरा, और फिर अचानक मुरली सुनाते सुनाते ऐसे देखा और कहा कि मैं टाइप कर रहा था साथ साथ, मुझे कहा टाइप बंद कर दो, लिखने वालों को बोला लिखना बंद कर दो, टेप वालों का रिकॉर्ड करना बंद कर दो, सब डर गए पता नहीं क्या बाबा भी बोलने वाला है, रिकॉर्डिंग बंद करा दी, टाइप बंद करा दी, लिखना बंद करा दिया। फिर ग्रुप को बुलाया, बड़े भाई बहनों को, दादियों को, सबको सामने बोला आप समाचार सुनाओ क्या क्या हो रहा है। तो सब बातें बताई गई बाबा को, बाबा ऐसे सरकार की बातें, इनकम टैक्स की बातें, ये है वो है, बहुत सारी बातें सुनाते रहे, और बाबा एकदम बेफिक्र बादशाह जैसे, एकदम बेफिक्र निश्चिंत ऐसे बैठा, टांग पर टांग चढ़ी हुई। बाबा कहता है बच्चे आने वाले दिन को, सवेरे को कोई रोक सका है, वो तो आना ही है, जब सत्युग आना ही है, स्थापना होनी है, तो इन बातों की क्या परवाह कर रहे हो, ये तो छोटी छोटी बातें आएंगी चली जाएंगी, वर्णन भी नहीं करो, योग को बढ़ाओ। योग बल जितना बढ़ता जाएगा, योग का जितना अच्छा घेराव होगा, उतना ये सब प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ जरूरत नहीं किसी को बोलने की। वो निश्चिंत स्थिति निश्चय के आधार पर है। यज्ञ बाबा का है, कराने वाला बाबा है, स्थापना होनी ही है, नई दुनिया को आना ही है। चाहे जितने बड़े पेपर्स आ जाएं यज्ञ के आगे, वो पेपर्स ठहरने वाले नहीं है। हम क्यों अपने आप को एकदम उलझा लें, परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, अपने नेचर को बदल दें, एकदम जोश में आ जाएं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। कईयों को आ जाता है, कुछ यज्ञ के ऊपर होता है, हम ऐसे करेंगे, गुस्से में भी बोल देते हैं, हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम केस कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। दादी ने भी एक बार, परदादी थी ना, उनको भी एक बार आ गया, ब्रह्मा बाबा के लिए कुछ अखबारों में उल्टा सीधा लिख दिया। बहुत सारे आर्य समाजी लोग, दूसरे लोग बहुत उल्टा सीधा लिखते थे। दादी को आया कि मैं इसके ऊपर केस कर दूं, मेरे बाप के लिए ऐसे बोलते हैं लोग। दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे आपके लिए लिखा है और मैं तो मानहानि का केस करूंगी। बाबा बहुत नम्रता प्यार से उसको कहा, बच्ची किस अखबार में आया है? तो उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, उस बच्चे को जिसने लिखा है उसको लिखो कि तुम तो बहुत अच्छा अखबार निकालते हो विश्वामित्र, आप तो हमारे परम मित्र हो। प्यार से पत्र लिख करके उसको कहो कि बहुत अच्छा आपने किया, इससे बहुत अच्छी एडवर्टाइज हो गई, हमारे बाबा को बहुत लोग इससे पहचानेंगे, समीप आएंगे। इतना अच्छा बाबा ने उसको उत्तर दिया कि केस क्या करना बच्ची, ये तो अनजान है ना, इनको तो पता ही नहीं ये कौन है। इतनी नम्रता सरलता से बाबा ने उस बात को समाप्त कर दिया। तो कभी भी हमको कोई भी ऐसी बातें दिखाई दे सुनाई दे, लेकिन अगर सरल नेचर है तो बातें तो समाप्त होनी ही है। एक बार बाबा ने कहा ना, बातें बड़ी या बाप बड़ा है? तो बातों की परवाह करके हम अपने आप को क्यों टेंस में ले आए, क्यों बहुत ज्यादा उलझन में आ जाएं? बाबा बड़ा है, बाबा अपने आप सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए सरलता और शीतलता, योग से ये दो गुण बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं। शीतल भी बन जाता, अंग अंग शीतल है, उत्तेजनाएं नहीं है, आवेग नहीं है, आवेश नहीं है, सबके साथ मिल करके चल सकते हैं। और साथ साथ जब योग से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है, आत्मा तृप्त महसूस करती है। बाबा की याद सब कुछ प्राप्ति कराती है, अविनाशी प्राप्ति कराती है। जहां हद की प्राप्तियों की कामनाएं हैं, वहां असंतुष्टता जरूर रहेगी, क्योंकि वो कामनाओं के पीछे जितना हम जाते हैं, एक पूरी होती है, दस खड़ी हो जाती है। इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन आप लोग पढ़ेंगे, हमारे यहां जगह जगह पर लिखे हैं, इच्छाएं कम कर दो समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर हम सब की ये हद की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो कोई भी प्रकार की समस्या है ही नहीं। हद की कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, ये चाहिए ये चाहिए, ये साधन ये सुविधा दाता दे रहा है, सब कुछ भरपूर कर रहा है। और बाबा कहता, बच्चों के लिए तो सब कुछ है, ये प्रकृति दासी तुम्हारी तो बननी है, इसके पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इसके पीछे भागने की बजाय तुम बाबा को याद करो, बाबा से शक्ति लो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन करके रहो। संतुष्टता एक इतना अच्छा गुण है, कहते हैं संतोष धन जिसके पास है उसको सब धन धूल समान है। वो सब ऐसे लगता है सब उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन भरपूरता है, तृप्ति है, लगता है बाबा से सब कुछ मुझे मिल गया। कुछ समय योग करो तो ऐसे लगेगा सब प्राप्तियां कर ली, विनाशी प्राप्तियां क्या है, ये सब अल्पकाल की हैं, तो सब खत्म होने वाली है, क्या चाहिए मुझे? जो जरूरत होगी, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो तो जरूर पूरी होंगी, लेकिन इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर सकता। आवश्यकताएं हैं तो आएगा साधन, बाबा के बच्चों को नहीं आएगा तो किसको आएगा। लेकिन अगर इच्छाएं रख करके उसके पीछे भागोगे तो उसको बाबा कहता है ये तो मृग तृष्णा के समान, भागते रहो भागते रहो, वो आपके प्राण ले लेंगे लेकिन पूरी नहीं होंगी। इसलिए संतुष्टता, स्वयं संतुष्ट रहे, हमारा परिवार हमसे संतुष्ट रहे, हमारा बाबा हमसे संतुष्ट रहे, ये तीन सर्टिफिकेट कई मुरलियों में बाबा ने लेने के लिए प्रेरित किया है। स्वयं की संतुष्टता के लिए जरूरी है ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की रेखा। कोई कहे, कोई ऐसे पूछ दे मेरे से आप संतुष्ट हैं, तो हम चलते फिरते यही कहेंगे हाँ जी, कहेंगे ना, बोल निकलेगा क्या कहेंगे, हाँ जी संतुष्ट हैं। बाबा भी पूछेगा, बाबा कहेगा बच्चे संतुष्ट हो, तो सब हाथ उठा देंगे हाँ बाबा संतुष्ट हैं। लेकिन बाबा उसको संतुष्ट मणि का टाइटल देता है जो हर नियम और मर्यादा का पालन करते हुए श्रीमत के लकीर के अंदर रह करके फिर कहे मैं संतुष्ट हूं, कोई भी उससे अवज्ञाएं न हो। बाबा जैसा बनाना चाहता है अगर ऐसा हम रहकर बन करके दिखा रहे हैं, हमारी जीवन उसके अंदर चल रही है, फिर बाबा से हमें सर्टिफिकेट लें कि हम बाबा सदा संतुष्ट हैं। पुरुषार्थ में संतुष्टता ये नहीं है कि हाँ जहां हैं वैसे हैं जैसे हैं ठीक है, इस संतुष्टता को संतुष्टता नहीं कहता बाबा। इसके लिए तो कहता रेस करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, दौड़ी लगाओ, अच्छे से अच्छे नंबर के लिए रेस करना, इसमें संतुष्ट होकर के अलबेले नहीं बन जाना। कोई अलबेले होते ना, हम तो संतुष्ट है ना, जहां है ठीक है, इतने में ही ठीक है, हमको नहीं ज्यादा चाहिए, जो पद मिलना होगा मिल जाएगा, ये बाबा कहता अलबेलेपन की भाषा है, संतुष्ट आत्मा की निशानी नहीं है। संतुष्ट आत्माएं ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर रहते हुए सदा उमंग उत्साह में बनी रहे, हर नए कार्य के लिए उनका उमंग उत्साह बढ़ता रहे, उसको बाबा कहता है सदा संतुष्ट आत्मा है। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब हम सबको सम्मान देते हैं, सम्मानजनक बोल, सम्मान दे करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना, कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन सब समान रूप से देखकर सम्मान देते चले, हर एक का प्यार भी मिलेगा, संतुष्टता भी मिलेगी। एक बार दादी जी बाबा से यहां मिल रही थी, यहीं इसी स्थान पर, बाबा ऐसे बहुत मुस्कुरा करके दादी से पूछने लगे। बाबा भी ऐसे बोलते, दादी आपसे सब संतुष्ट हैं, ऐसे पूछा प्रश्न। तो दादी बाबा को देखने लगी, बाबा को बोली, बाबा मैं कैसे कहूं मेरे सब संतुष्ट हैं, वो तो आप सर्टिफिकेट देंगे। कुछ जवाब नहीं दिया, दादी ऐसे बाबा को देखती रही। बाबा ने कहा, बच्ची बाप जानते हैं जब कोई सीट पर होता है तो कोई कोई अपसेट होते हैं, एक तरफ निर्णय किसी का दे दिया गया तो दूसरा अपसेट हो जाएगा कि दादी ने उसकी सुनी मेरी नहीं सुनी, असंतुष्ट हो जाएंगे। आप सीट पर बैठी हैं, आपको बाबा ने पोस्ट पर इस पर बिठाया है, अपनी गद्दी दी है, तो इस पर निर्णय तो लेना पड़ेगा, और निर्णय अगर एक तरफ हो गया, एक पक्ष में हो गया, दूसरी तरफ नहीं पहुंचा, तो जिसकी तरफ नहीं पहुंची बात तो उसको लगेगा कि उनका पक्ष लिया गया, मुझे नहीं सुना गया, वह संतुष्ट होगा। बच्ची तुम तो 95% संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करो, 5% अगर कोई की अपनी आदत है, कोई के अपने संस्कार हैं, कोई के अपने स्वभाव हैं, उसके कारण असंतुष्ट है तो भले होने दो, उसकी परवाह नहीं करो, वो भी धीरे धीरे संतुष्ट हो जाएगा। जब देखेगा कि इनकी तरफ से मेरे पर कोई वो नहीं आ रहा है, ये मेरी आदत के कारण, मेरे स्वभाव के कारण मैं असंतुष्ट, तो इसलिए आप बच्ची को, बाबा ने कहा 95% मार्क्स बाप देता है। तो ऐसे ही हम भी अपने इस परिवार के अंदर, लौकिक और अलौकिक के परिवार में देखें, कि हम कितना एक दूसरे को सम्मान दे करके सम्मान की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर कोई अपने कारण से असंतुष्ट है, मान लो आपको बाबा ने एक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के बंधन में बांधा है, श्रीमत की बाउंड्री दी है और साथ साथ कहा है संतुष्ट भी करो। अगर ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ करके संतुष्ट करें तो बाबा संतुष्ट हो गया, माना बाबा का सर्टिफिकेट कैंसिल। इसलिए इस बात को अंडरलाइन करना कि पहला भगवान है या पहले व्यक्ति है। अगर हमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट बाबा दे देगा तो ये आत्मा आज नहीं तो कल महसूस करके तो सर्टिफिकेट देगी, आज असंतुष्ट है क्योंकि हम नियम का पालन कर रहे हैं, हम उसको मीट मसाला बना के नहीं खिला रहे हैं, वो सब नाराज होगा। हम उसको विकारों की जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, वो नाराज होगा, असंतुष्ट होगा। लेकिन किसके कारण नहीं कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा के प्रमाण हम नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे थे अभी तक, अभी तक तो वही कर रहे थे, अब भगवान की आज्ञा मिली है तो उसकी आज्ञा के अनुसार चल करके कर रहे हैं। इसलिए असंतुष्ट होने वाली आत्मा किसी न किसी दिन संतुष्ट हो जाएगी, आज होने दो, उसको छोड़ दो। हम मर्यादा का उल्लंघन करके किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इस बात को अंडरलाइन करेंगे ना तो बहुत दृढ़ रहेंगे, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सब सहयोगी बनेंगे, कुछ समय विरोध होगा, लेकिन थोड़े समय में वो रियलाइज करेगा कि इनके नियम बड़े अच्छे हैं, इनकी धारणाएं बहुत ऊंची हैं, हम तो नहीं बन सकते, कम से कम ये तो बन गई। इसलिए अपने आप में बहुत पक्के होकर के संतुष्टता के गुण को यूज जरूर करो, लेकिन संतुष्टता के आधार से मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए। तो परिवार में सबको रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, सबको प्यार देना, सहयोगी बनना, ये सर्टिफिकेट लेने का आधार है। और बाबा का सर्टिफिकेट तो उन्हीं को प्राप्त है जो सच्चे दिल वाले हैं, जिनके अंदर और बाहर अलग नहीं, समान है। जो मैं अंदर से हूं वही बाहर हूं, बाबा को दिखा नहीं रहा हूं। बाबा के आगे कहूं मैं तो बड़ा अच्छा योगी हूं और अंदर से हम बहुत युद्ध कर रहे हैं। इसलिए अगर सच्चे हैं, अंदर बाहर साफ हैं, बाबा के आगे स्पष्ट हैं, तो बाबा उस पर प्रसन्न है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट बाबा से, स्वयं से, परिवार से और बाबा से लेकर के हम संतुष्ट मणि बन सकते हैं। और ये संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां। सर्व प्राप्तियां केवल बाबा की याद से, योग के बल से प्राप्त हो सकती हैं। हद की प्राप्तियों के लिए तो अनेक साधन है, लेकिन अविनाशी प्राप्तियां केवल योग से प्राप्त हो सकती। इसलिए बाबा ने एक स्लोगन परिवर्तन किया। पहले एक स्लोगन बाबा देते थे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। अभी कह रहे हैं कुछ समय से मुरली के अंदर, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं से भी ऊंचे हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों के खजाने में गुण की, ज्ञान की, शक्ति की कोई कमी नहीं। और वो जिसके पास अविनाशी संपत्ति है, विनाशी संपत्ति ज्ञान धन के बाद, सुना होगा बाबा की मुरली में, जिसके पास ज्ञान धन है वो सबसे बड़ा धनवान है, संपत्तिवान है। कोई कोई मेरे को पता क्या कहते हैं, आप तो कुबेर के खजाने के मालिक हो। और बाबा ने सचमुच बनाया है, मुझे नशा रहता है, जितना भी पढ़ाई का कोर्स जा रहा है ब्राह्मण परिवार में, बाबा इन्हीं हाथों से भिजवा रहा है। इसलिए इतना खजाना बाबा ने दिया है, इतनी संपत्ति दी है, उस संपत्ति के पीछे कभी विचार नहीं चलता, अपने आप बाबा सब दे रहा, भरपूर किया है, माला माल किया है, कोई संकल्प उठता है पूरा हो जाता है। डिपार्टमेंट के लिए उठेगा और किसके लिए उठेगा, जो सेवाएं मिली उसको सफल बनाने के लिए उठेगा। लेकिन मैं आपको ये अनुभव से कहता हूं, बाबा के सामने अगर एक संकल्प पहुंचा दूं, ये बाबा इस डिपार्टमेंट में जरूरत है, कहीं न कहीं से आ जाती है, लेना नहीं पड़ता, मंगाना भी नहीं पड़ता, बाबा सुनता है, देखता है। लेकिन बहुत सच्चाई से संतुष्ट आत्मा इसीलिए है क्योंकि भरपूर है, कोई कमी नहीं। तो आप सभी भी ज्ञान धन से, गुणों के धन से, शक्तियों के धन से, चरित्र के धन से अपने आप को भरपूर कर लो, और वो योग से भरपूर होंगे, और इससे अगर भरपूर हो गए तो अप्रापत नहीं कोई चीज आपके खजाने में, सदा संतुष्ट सदा तृप्त, भरपूर करो, भरपूर हो करके रहो। ओम शांति। नहीं नहीं, तरबूज यहाँ क्या खाएंगे, वहीं जाना पड़ेगा। तो क्या पूछना है? अच्छा पूछो भाई, सुनाया इतनी सारी बातें अंदर, इतनी सारी सुनाई ना, अंदर की सुनाई ना। चलो ठीक है, फिर कभी आपके पास आके सुना देंगे। कविता बहन को रब लग रहा है। देखो ऐसा है कि आप सबको मालूम है कि यज्ञ के अंदर 14 साल जो हुआ, जो बार बार दादियां कहती हैं ना, भट्टी किया मैंने, तो 14 साल भट्टी जो हुई, ये बड़ी विचित्र भट्टी थी, ये भट्टी नहीं थी योग की ऐसी। उसमें बाबा को दुनिया के वातावरण से इनको दूर रखना था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, बहुत मारामारी हो रही थी। तो 12 साल माना कराची में जब रहे हैं दादियां, तो बाबा इनको बहुत अच्छे अच्छे ट्रांस के द्वारा अनुभव कराए। ये जितना ज्ञान स्पष्ट हुआ वो सब दादियां जाती थी, और कोई कोई संदेशी को 1 मास 15 दिन तक बाबा वतन में रखता था, खाना पीना कुछ नहीं, बस ऊपर आंख बंद और सब कार्य कर रही है। तो ऐसे ट्रांस में जब ये संदेशियां रहती थी तो उसके द्वारा बाबा कई रहस्य खोलते थे, गद्दी कैसे चलेगी, लक्ष्मीनारायण कैसे गद्दी पर बैठेंगे, जन्म कैसे होगा, जो ये बाबा की साकार मुरलियों में बातें कभी कभी आती हैं, जहां जीत वहां जन्म, जहां जन्म वहां जीत, कई शब्द बाबा के ऐसे आते हैं, वो सब रहस्य उस समय बाबा ने इन संदेशियों के द्वारा खुलवाए। और वो खोल करके फिर बाबा साकार में तो थे, ब्रह्मा बाबा के तन में से बाबा आते थे, तो डायरेक्ट संदेशियां तो छोटी छोटी बच्चियां थी, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल की, तो बाबा के सामने आने में तो डर लगता था, तो इसलिए मम्मा के पास आकर के वो बताती थी, मम्मा को सुनाती थी, बाबा के पास मैं गई, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। तो मम्मा एक कमेटी बना करके बहनों की फिर उसको प्रैक्टिकल में स्टेज पर दिखवाती थी, ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में, धर्मराजपुरी की बातें, बहुत सारी बातें उस समय यही खेल पाल चलते थे, दुनिया में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। लेकिन उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तो ये वीडियो तो थी नहीं, आपके पास जैसे मोबाइल है शूट कर लिया, वो तो कोई साधन साइंस के थे नहीं। लेकिन फिर भी कोई दादियां ऐसी थी जो गुप्त रीति से लिखती थी, डायरियां सबने बनाई थी, और डायरियां जब कराची से यहां आने लगे तो बाबा को सरकार ने, वहां के लोगों ने कहा कि जितना आपके पास सामान है सब ले जा सकते हो। आपको पता होगा जब ये भागे हैं पाकिस्तान से, जो हिंदू लोग थे, तो उस समय जब पार्टीशन के समय भागे तो बेचारे कुछ भी अपने साथ नहीं लाए, खाली हाथ आए, और जो इनके संबंधी थे वो भी बाबा को सब सामान दे के आए, कारें दे दिया, सामान दे दिया, घरों की चाबियां दे दी, बाबा आप यहां नहीं, यहीं रहोगे तो आप ले लो सब। तो यज्ञ के अंदर बहुत था माल, बहुत सामान था, और जब बाबा आने लगे 50 में, 4 साल के, 3 साल के बाद आए बाबा, पार्टीशन 47 में हुआ, 1950 में आए, तो सारा सामान जब वजन किया, स्टीमर भरना था, 350-400 लोग, उनका इतना सामान, बिस्तर, अटैची, कपड़े, खाने का सामान, साबुन, तेल, कितना होगा आप समझो, घर का गृहस्थी सामान, तो सबका वजन किया गया, तो सबसे ज्यादा वजन था डायरियों का। तो बाबा ने बड़ी युक्ति रची कि बच्चियां तो डायरियां नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इनके अंदर इसमें खजाना इन्होंने भरा है। तो बाबा ने एक मुरली चलाई कि बच्चे द्वापर में जो शास्त्र बनेंगे उसका आधार क्या होगा, यही आपके जो नोट्स हैं यही काम आएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी इसी स्थान पर एक जमीन में खड्डा खोदो और एक बहुत बड़ा लोहे का टैंक ले आओ, सब अपनी डायरी यहां रखो, बहुत अच्छी तरह संभाल के पैक कर दो और मिट्टी से इसको दबा दो। जब द्वापर में भूकंप आएंगे फिर से तो यही निकलेंगी किताबें, इनसे शास्त्र बनेंगे। तो सभी दादियों की डायरियां बाबा ने उस समय मिट्टी में दबवा दी, लाने नहीं दिया। कोई कोई एक दादी को बोला भले तुम ले जाओ, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो दादियां छिपा के दो चार डायरियां पांच सात दस लेके आई, लेकिन देती किसी को नहीं थी, अपने पास रखती थी। ड्रामानुसार मैंने सिंधी सीखी, पढ़ना सीखा, क्योंकि दादियों के साथ रहना था तो उनकी भाषा को पढ़ना लिखना सीखना पड़ा मुझे। तो जब मैंने सीख लिया और जब दादियां अव्यक्त हुई, शरीर छूटे, तो उनके सब सामान मिले, तो उसमें डायरियां भी मिल गई हमको। तो उसमें फिर वो कई राज जो बाबा ने उस समय सुनाए हैं, मैं बीच बीच में मुरली के कहीं ना कहीं डालता हूं जो काम के हैं सबके, तो वो पॉइंट्स पढ़ने को सुनने को समझने को, क्या बाबा ने उस समय किया। हम प्रैक्टिकल तो हमने देखा नहीं, वो सब दृश्य देखने वाले तो अभी बचे कहाँ हैं, छह सात बचे हैं, वो भी एज बड़ी है, दादी जानकी कुछ बातें सुनाती हैं और कोई दादी तो सुनाती नहीं इतना, तो वो यादगार नहीं रहा उस समय का। उसमें बाबा ने धर्मराजपुरी का क्या रहस्य बताया है, आप सब समझते हो धर्मराजपुरी क्या है, कौन कौन जानते हो? दरबार लगेगी। मैं साठ में सुनाता हूं जहां तक मुझे याद है, तो बाबा ने उसको इस तरह से स्पष्ट किया कि संदेशी एक बार ट्रांस में गई, तो जाना था बाबा के पास, लेकिन वो ट्रांस में जाते जाते वो यमलोकपुरी में पहुंच गई ट्रांस में। तो वहां पर उसने दृश्य देखा कि धर्मराज सामने बैठे हैं और यमदूत बहुत काले काले भयानक किसी एक व्यक्ति को शरीर छोड़ा है, उसको पकड़ के ले आए हैं उसके आगे, धर्मराज के आगे, और धर्मराज का ऑर्डर मिल रहा है कि इसको बहुत खौलते हुए तेल में इसको उल्टा लटका दो। तो ऐसे ही उस व्यक्ति को लटकाया जा रहा है गरम गरम तेल की कढ़ाई के अंदर। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक बहुत लाल लाल खंभा है, उसके आगे कहा जाता है इसको भाकी पहना दो ऐसे। वो उसको ऐसे पकड़ता है और सारा गल जाता है, खूब चिल्लाता है रोता है। तो बड़ा दर्दनाक सीन बाबा ने उसके आगे रखा। संदेशी डर गई, क्या है ये सब, मैं तो बाबा के पास आई थी, क्या देख रही हूं। तो थोड़ी देर के बाद धर्मराज ने उसको बुलाया कि ये बच्ची यहां की जो कलयुग में पाप कर्म कर रहे हैं उसकी सजा है। फिर दूसरे बात उस दृश्य को मर्ज करके एक दूसरा दृश्य के पास पहुंचा दिया और उसमें देखा कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, उसको धर्मराज के सामने लाया गया। धर्मराज ने उसको देखा कि इसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसको अच्छी तरह से देवताई ड्रेस में सजाया जाए और इसको एक राजगद्दी दे करके इसको आसन पर बिठाया जाए, उसकी फूल से दूध से पैरों की धुलाई हुई, बहुत अच्छा सम्मान हुआ। एक बहुत दो दृश्य इमर्ज किए। अब ये दोनों दृश्य देख करके बाबा के पास वो संदेशी इमर्ज हुई, बाबा के पास गई, बाबा को बोली बाबा आज आपने मुझे कहां भेज दिया, मैं कहां चली गई आज। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमने क्या देखा, तो उसने सब सुनाया बाबा को। तो बाबा ने उसका एक आध्यात्मिक रहस्य बताया। बाबा ने कहा बच्ची ऐसी कोई धर्मराज पूरी नहीं होती, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है उस समय उस आत्मा के आगे अपने किए हुए पाप यमदूत के रूप में दिखाई देते हैं, भयानक बहुत, और वही यमदूत उसको सजा के रूप में दिखाते हैं तूने ये किया और उसकी ये सजा है। तो कोई इमर्ज करके कोई ऊपर वो आत्मा नहीं आ रही, लेकिन उसी समय कुछ घड़ियों के अंदर वो महसूस करती है कि मैंने अनेक जन्मों का पाप भोगा और जो पुण्य कर्म की हुई आत्माएं उनको सुख की अनुभूति होती है शरीर छोड़ने के समय। तो ये लास्ट का एक दृश्य होगा और उनके सामने जिन्होंने उनको शिक्षाएं दी हैं जो आत्माएं इस समय हमारे निमित्त बनी हैं, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, उनका भी कहना नहीं माना, तो वही जैसे ट्रिब्यूनल के रूप में उनके सामने दिखाई देंगे कि इन्होंने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने ये किया। तो ऐसे धर्मराजपुरी को बाबा ने स्पष्ट किया कि कोई धर्मराजपुरी कोई ऐसा स्थान नहीं है, ऐसे कोई यमदूत नहीं है, ऐसे कोई स्थूल में अग्नि जल रही है, ये तेल गर्म हो रहा है उसमें डाला जा रहा है, ये स्थूल की बात नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म सजाएं स्थूल का अनुभव कराती। चलो एक मिनट योग करके फिर आप।
बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की बातें जो जल्दी ही कहां कहां पहुंचाया देखो, यहां के मधुबन की शुरुआत में, कुछ कराची में, कुछ जहाज पर, सब तरफ पहुंच गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।